खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानू ना गीतों को तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। हो खत्म नहीं वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे, क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे। संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने, मन में कब आते हैं विकार खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने, चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े, ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे, करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले।
ओम शांति। आग लगा दूंगा मैं, आग लगा दूंगा मैं, दुनिया हिला दूंगा मैं, आग लगा दूंगा मैं, दुनिया हिला दूंगा मैं, भर के ज्वाला सीने में हर डर को मिटा दूंगा मैं। जिस भय ने तुझको रोका है, जिस भय ने तुझको रोका है, नहीं है सच कुछ भी, ये सब तो धोखा है। बढ़ता रहा रह तू आगे, किसने तुझको रोका है, किसने तुझको रोका है, बन के ज्वाला मैं एक आग लगा दूंगा, बन के ज्वाला मैं एक आग लगा दूंगा, हर डर की जड़ को मैं जड़ से मिटा दूंगा। एक जिंदा लाश नहीं तू, ना हो मुकम्मल ऐसा काश नहीं तू, एक जिंदा लाश नहीं तू, ना हो मुकम्मल ऐसा काश नहीं तू, है खुदा तेरे ही साथ पहचानना खुद को यार तू, पहचानना खुद को यार तू, जानता हूँ कि आंखें तेरी भी रोती है, जानता हूँ कि आंखें तेरी भी रोती है, कई रातों में भी कहाँ ये सोती है, क्या लेकिन क्या तू हार मान लेगा, नहीं कभी नहीं, तो फिर सुन मेरी बात, जब दर्द हो तो रो लेना, ताने हो तो सुन लेना, जब दर्द हो तो रो लेना, ताने हो तो सुन लेना, शांत होकर फिर से यार एक और प्रयास तू कर लेना, दुनिया की बातों को हंस के तू टालना, हर बुरी आदत को तू जिंदगी से निकालना, बोले पागल कोई तो भी तू सह लेना, न रूठना उससे तू, बस मेहनत से कह देना, ये सीने पर जो घाव है, घाव नहीं फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो ना, हम पागल ही अच्छे हैं। अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, टूटी हुई तलवारों से विजेता शमशीर सजाऊंगा, रोती हुई आंखों में मैं रौनक फिर से लाऊंगा, रोती हुई आंखों में मैं रौनक फिर से लाऊंगा, मायूस चेहरों पर मैं खुशियां बनकर छाऊंगा, अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, फाड़ कर रख दूं हर निराशा को, ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा, ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा, आग लगा दूंगा मैं, दुनिया हिला दूंगा मैं, भर के ज्वाला सीने में हर डर को मिटा दूंगा मैं। तीन लकीरों में पहली लकीर कौन सी है? सुख की लकीर, शांति की लकीर और पवित्रता की लकीर। पवित्रता, सुख और शांति, पवित्रता, सुख और शांति, ये तीन लकीरें बाप दादा देख रहे हैं। कर्मों की लकीरें, कर्मों के खाते, कर्मों की कहानी, कर्मों की कहानी, कर्मों का खाता, कर्मों की लकीरें, लाइंस। कितनी भी परिस्थितियां आवे, दुख की लहर भी उत्पन्न दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की क्या हो जाए? अविद्या। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थिति में भी क्या कहेंगे? वाह मीठा ड्रामा, वाह हरेक पाठधारी का पाठ। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी दुख वाली हो, पीड़ा वाली हो, दर्द वाली हो, सीने में घाव है, फूलों के ये गुच्छे हैं, हम पागल ही सही, हम पागल ही अच्छे। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर। दुख क्या है? रात्रि है, अंधकार है। इस दुख के अंधकार को क्या करना है? परिवर्तन कर, मास्टर सुखदाता बन। स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही है, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, परंतु दुखी नहीं, यह है टारगेट। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा न सके। मिटाने वाले बदल जाए, लेकिन वह नहीं। मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले ले, ऐसी लकीर वाले भी देखे। नंबर वन तकदीरवान, वन की निशानी है विन, आई एम विनर। केवल एग्जाम में नहीं, जीवन की परिस्थितियों में भी विनर। यह है पहली लकीर। दूसरी शांति वाली, कुछ भी हो जाए, धरत पड़े धर्म ना छो। और तीसरी है पवित्रता की लकीर। पवित्रता, सुख और शांति, ये तीन लकीरें बाबा ने देखी। थ्री लाइंस ऑफ अधिकार, अधिकार की ये तीन लाइन। कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी दुख की परिस्थिति हो, याद क्या रखेंगे? वाह मीठा ड्रामा, और दूसरा वाह हर एक पाठधारी का पाठ। ये दो बातें याद रखनी है। वाह मीठा ड्रामा, ड्रामा भी कैसा? मीठा मीठा, कड़वा नहीं, दुखदाई नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, वाह मीठा ड्रामा। और दूसरा वाह, दूसरा वाह हर एक पाठधारी का पाठ। उसमें वो सारे लोग भी आ जाएंगे जो परिस्थिति के कारण है, जो दुख देने वाले हैं, उनका भी पाठ कितना अच्छा है, बहुत अच्छा पाठ, बहुत ज्यादा सुख में उड़ रहे थे। यही समय है डिप्रेशन में जाने का, अब डिप्रेशन में जाओ और अंतर्मुखी हो जाओ। फेल होने के बाद व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है और अंतर्मुखी होके चेकिंग करके फिर बाहर निकलता है, और पास होने के बाद पिकनिक, पास होने के बाद बाह्य मुक्ता, पास होने के बाद सबको सुनाना, पास होने के बाद सेल्फ चेकिंग समाप्त। जिसको एक मार्क अगर मिल जाए उसके पास कितने ऑप्शन है? 49 ऑप्शन है उसके पास आगे बढ़ने के। जिसको 20 मार्क मिले उसके पास कितने ऑप्शन है? 30 ऑप्शन अभी है। तो ज्ञान को यूज करना है। किसी गांव में एक बहुत बड़ा पंडित था, उसके पास ढेर सारी किताबें थी और वो बहुत प्रसिद्ध था और बहुत निर्मल चित्त था, निर्माण चित्त था, और लोगों की बहुत मदद करता था। लोग उसके पास आते थे अपनी समस्या लेकर, घर गृहस्थी की समस्या लेकर, वो तुरंत किताबें खोलता था, स्टडी करता था और उनको सॉल्यूशन देता था, समाधान देता था, और लोग खुश हो जाते थे। और ये काम वो सदियों से करते आ रहा था और लोग उसे बख्शीश, पुरस्कार के रूप में, सौगात के रूप में कुछ दे देते थे, उसी से उसका जीवन चलता था। इसी सिलसिले में वो किसी दूसरे गांव में एक बार जा रहा था, जंगल की यात्रा थी और डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। और डाकुओं ने कहा, तुम्हारे पास जो भी पैसा है सब दे दो। उसने कहा, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। डाकुओं ने कहा, जो है वो सब दे दो। उसने कहा, केवल एक झोली है, उसमें किताबें है। वो कहते हैं, किताबें दे दो, हम किताबें बेचकर पैसे खरीद लें, पैसे जमा कर लेंगे। वो कहते हैं, किताबें मत लेना, क्योंकि इन किताबों के आधार पर ही तो लोग मेरे पास आते और मैं उनको समस्याओं का समाधान देता हूं। और डाकू कहता है, ये कैसा ज्ञान है तुम्हारा जो किताबों के बिना समाप्त हो जाता है? ये कैसा ज्ञान है तुम्हारा? अगर किताबें नहीं तो ज्ञान समाप्त। बस डाकू की एक बात ही अंदर लग जाती है। आज तक कोई सिखा नहीं पाया, उस डाकू ने सिखा दिया। किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा। ज्ञान को क्या करना है? प्रैक्टिकल में लाना है। उसके लिए एक बीच की कड़ी है और वो कड़ी है मनन, वो कड़ी है चिंतन, अध्ययन, जर्निंग। कहां उसको यूज करूं? वाह ड्रामा वाह, वाह हरेक पाठधारी का पाठ वाह। ये दो मंत्र है, वाह ड्रामा वाह, वाह हरेक पाठधारी का पाठ। कुछ भी हो जाए परंतु रुकना नहीं है। बन के ज्वाला में एक आग लगा दूंगा, हर डर की जड़ को मैं जड़ से मिटा दूंगा। ये डर ही है जो भीतर छिपा है हमारे। भर के ज्वाला सीने में, हर डर को मिटा दूंगा। जिस भय ने तुमको रोका है, जिस भय ने तुमको रोका है, नहीं है सच कुछ भी, ये तो सब धोखा है। बढ़ता जा तू आगे, किसने तुझको रोका है? एक जिंदा लाश नहीं तू, ना हो मुकम्मल ऐसा काश नहीं तू। है खुदा तेरे ही साथ, पहचान ना खुद को यार तू। जानता हूं आंखें तेरी भी रोती है, कई रातों में भी कहां ये सोती है। लेकिन क्या तू हार मान लेगा? नहीं, कभी नहीं। तो फिर सुन मेरी बात, जब दर्द हो तो रो लेना, ताने हो तो सुन लेना, शांत होकर फिर ये यार एक और प्रयास तू कर लेना। दुनिया की बातों को हंस के तू टालना, कल भी कहा था, ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? दुख, छुई मुई, टच मे नॉट, HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन, हर चीज को पर्सनल ले लेना, जानबूझकर मुझे टारगेट करते हैं। दुनिया की बातों को तू हल्के हंसके तू टालना, हर बुरी आदत को तू जिंदगी से निकालना। बोले पागल कोई तो तू सह लेना, ना रूठना उससे तू, बस मेहनत से कह देना। ये सीने पर जो घाव है, घाव नहीं फूलों के गुच्छे, हमें पागल ही रहने दोनों, हम पागल ही अच्छे। अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा।
दर्द को क्या करना है? दर्द कन्वर्ट इनटू ताकत, पावर, पेन टू पावर, पी टू पी कन्वर्शन। जितना ज्यादा पेन उतना अधिक पावर। पेन सहन करने का यह सुनहरा मौका आया है, ये मौसम है दुख सहन करने का। इससे क्या बन जाओगे? पावरफुल। पेन आया है ना, अब उससे रिवॉर्ड लो।
वो पेन किस लिए आया है? तुम्हें बख्शीश देने के लिए। पेन किस लिए आया है? बख्शीश देने के लिए,
पारितोषिक देने के लिए आया है। उससे उसका फायदा उठा लो।
ऐसा दुख जीवन में फिर नहीं आएगा, उससे फायदा उठा लो। इतना बड़ा दुख।
नो पेन नो गेन। जितना बड़ा पेन उतने ज्यादा पावरफुल।
एक बच्चा है छोटा और उसके पिता है। उसके पिता चाहते हैं कि उसका जो बेटा है वो फुटबॉल प्लेयर बने, सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर दुनिया का। और वो बचपन से उसे ट्रेनिंग भी देते हैं, उसकी हर मैच देखने वो आके बैठते हैं, हर मैच। कॉलेज में जाता है, बड़ी बड़ी जो प्रतियोगिता है उसमें भी वो भाग लेने लगता है। उसके पिताजी हर मैच में आके बैठते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। और फिर एक दिन जो सबसे बड़ी नेशनल मैच होती है वो है, और उसी दिन सुबह उसके पिताजी शरीर छोड़ते हैं, डेथ हो जाती है। जो फुटबॉल के कोच होते हैं वो कहते हैं कि तुम आज आराम करो, आज का छोड़ दो, सोचना भी मत ग्राउंड का, क्योंकि इतनी बड़ी बात तुम्हारे साथ हो गई है। तुम्हारे पिताजी जिससे तुमको इतना प्यार था वो सब जानते हैं, और हम समझ सकते हैं तुम्हारे अंदर क्या हो रहा होगा, इसलिए आज का छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। वो लड़का चला जाता है, पर जैसे ही मैच चालू होने को होती है वो वापस आ जाता है। उसको सब समझाते हैं कि छोड़ो, ये मैचेस तो होती रहेगी, मैचेस का क्या है। वो नहीं सुनता है और खेलना चालू करता है। और उस दिन ऐसे खेलता है कि आज तक कभी खेला ही नहीं। He was the star। ऐसे ऐसे गोल करता है और लास्ट में जीत जाता है। लास्ट में वो कोच और बाकी लोग उसको पूछते हैं, तुमने कैसे कर दिया इतनी दुख की घड़ी, और उसमें तुम आ गए और खेले भी ऐसे कि आज तक कभी खेले नहीं, ये तुमने कैसे किया? क्या उत्तर होगा? पिताजी का प्रोत्साहन स्मृति मिला है, और उस दुख को अपना पावर बना दिया, और पिताजी की आशा। और वो कहता है कि आपको पता है मेरे पिताजी जो थे पिछले 30 साल से ब्लाइंड है। उनको दिखता ही नहीं, फिर भी वो आके बैठते थे। आज पहली बार वो मुझे देख रहे होंगे, इसलिए मुझे ऐसा खेलना पड़ा। तो दर्द को अपनी क्या बना देना? ताकत, शक्ति। गिर नहीं जाना, रुक नहीं जाना। रुकना मना है, गिरना मना है। रुकती कला, बैठती कला, ठहरती कला, सिटिंग स्टेज, सिटिंग आर्ट। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती। रुकना ही नहीं। तो ये पूरी मुरली किस पर आधारित है? दुख को पार कर जाना, कितनी भी परिस्थिति आवे, दुख की लहर भी उत्पन्न दिलाने वाली लहर हो।
कौन सी लहर हो? जिसके लिए भगवान भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये रियल दुख है।
कौन एक्सेप्ट कर रहा है? सुख का सागर भी कह रहा है कि ये दुख है, आई एक्सेप्ट कि ये ही दुख है। लेकिन स्पार्क की एक किताब है लेकिन, जिसमें बाबा ने जितने लेकिन बोले हैं वो सब उस किताब में है। लेकिन का संकलन 14825। लेकिन लेकिन दुख शब्द की अविद्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सुख स्वरूप हूं, दुख हो ही ना। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा, दुख की परिस्थिति में भी, ये वाक्य तब नहीं कहना है जब सुख की परिस्थिति है, ये वाक्य कब के लिए है? ये दुख के लिए वाक्य है कि वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पाठधारी का पाठ, जब सारे लोग स्तुति कर रहे वाह 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 और कहना कि वाह 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 मीठा ड्रामा, एक्सीडेंट होने ही वाला था बच गए, वाह 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 वाह, ये तब के लिए नहीं है। इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा,
नॉलेज की रोशनी, नॉलेज प्रकाश है
और दुख अंधकार, अभी कहा ना दुख अंधकार है, दुख को सुख में परिवर्तन कर दो।
दुख को क्या कर दो? सुख में को परिवर्तन कर दो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर
कन्वर्टर, कन्वर्टर होते ना MP3 टू MP4 कन्वर्टर, वैसा कन्वर्टर, दुख आया तुरंत क्लिक करो कन्वर्ट, वीडियो टू ऑडियो, ऑडियो टू वीडियो कन्वर्ट, दबाओ कन्वर्ट, उल्टा मत दबा देना। मास्टर सुखदाता बन, स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हो, लेकिन फिर से लेकिन, औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हो। जहां मातम छाया होता है ना, सब जग रो रहे हैं, वहां आप भी चले जाओ, क्या हो जाता है? सेख ऐसा लगता है थोड़ा सा इनके साथ, उनके दुख के लिए अपना कोई पुराना दुख याद आ जाता है, उनको उनके दुख को देखकर उनका कोई मर गया तो हमारा कोई पुराना मित्र कभी शरीर जिसने छोड़ा होगा, उसको 20 साल हो गए, उसको भूल गए थे, इनका दुख देखकर आज रोने की इच्छा हो गई, कोई दादी माँ गई थी कभी बचपन में वो याद आ गई अचानक से। दुख बिगेट्स दुख, दुख से दुख का जन्म होता है, हैप्पीनेस बिगेट्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से हैप्पीनेस का जन्म होता है। चाहे कैसी भी, भगवान खुद स्वीकार कर रहा है कि यस आई एक्सेप्ट कि ये वास्तव में दुख है, पर दो काम करो, सुख को दुख को सुख में परिवर्तन करो, मास्टर सुखदाता समझो, और तीसरा वाह मीठा ड्रामा, वाह हर पाठधारी का पाठ, वाह। तो ये पूरी मुरली का सार इतना है। अपने दर्द को भी मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, टूटी हुई तलवारों से विजेता शमशीर सजाऊंगा। शमशीर क्या होती है? तलवार और शमशीर में क्या अंतर है? रोती हुई आंखों में मैं रौनक फिर से लाऊंगा, मायूस चेहरों पर मैं खुशियां बनकर छाऊंगा। मायूसी क्या होती है?
मायूस,
उदास, मायूस, दुख की पराकाष्ठा, बिल्कुल ही मायूस हो गए, जीवन से थक गए, हार गए, कोई उम्मीद ही नहीं रही है, टोटल डिप्रेशन। हॉस्पिटल में हर 15-20 दिन में एक व्यक्ति तो जरूर आता है पॉइजनिंग वाला, घर में छोटा सा झगड़ा होता है, अभी भी एक बहन एडमिट थी, 3 टैबलेट खा ली, वो भी भूख बढ़ने वाली टैबलेट थी, अब उसको क्या पता कौन सी है, जो थी घर में खा ली, तीन ही खाई हिसाब से, काम भी हो जाए और थोड़ी सहानुभूति भी मिल जाए। बड़े हिसाब से करते हैं लोग भी, और मैक्सिमम तो गोलियां जो खाते हैं डुप्लीकेट गोलियां होती है। हाँ मतलब हिसाब से सब देखते हुए, पर क्यों ऐसा कर रहे हैं ये एक गंभीर विषय। छोटा सा झगड़ा हो गया खाली, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया जहर। वो एक लिख के आता है ना, पिताजी ने अपनी किडनी दे दी बच्ची को, पिताजी ने अपनी किडनी दी अपनी बेटी को, और बेटी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि बॉयफ्रेंड चला गया छोड़ के। फाड़ कर रख दूंगा हर निराशा को, निराशा को आने ही नहीं देना, दुख को आने ही नहीं देना, उदासी को आने ही नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए। ये जो दुख और निराशा की जो अवस्था है, इंग्लिश में एक शब्द है मेलनकोली, मेलनकोली जो शब्द है अर्थात पुराना शब्द है ये, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन थोड़े समय के, पर लंबा समय से लो मूड है, लो मूड की अवस्था, मतलब सदियों से देख रहे, मतलब उदासी भी नहीं कहेंगे उसको, एब्सोल्यूट डिप्रेशन नहीं, पर कोई निरुत्साह है, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है। कभी भी देखो उनको, एक एक उदासी की लो मूड की अवस्था, मेलनकोलिया उसको कहते स्लो पॉइजन और उसी दुख में है, मतलब किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ना अमृत वेले में इंटरेस्ट, ना मुरली में, मना कर रहे सब, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे। वो एकदम एक्यूट डिप्रेशन नहीं है कि जिसमें मरने की इच्छा हो रही है व्यक्ति को, वो नहीं, मेलनकोली बीच वाली, कुछ भी, मतलब कितना भी उनको उत्साहित करो दुख की एक रस अवस्था, कोई इच्छा ही नहीं है किसी भी चीज की, कुछ भी, ना खाने की इच्छा है, ना अधिक सोने की इच्छा है, ना पीने की इच्छा है, ना कहीं घूमने की इच्छा है, ना बोलने की इच्छा है, ना कुछ करने की, कर सब रहे, सारे काम कर रहे अपने, परंतु एक उदासी है बस छाई हुई, बैकग्राउंड जो है उदासी है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उदासी का है, कोई भी चीज, सब लोग डांस कर रहे नाच रहे, अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बना दूंगा, फाड़ कर रख दू हर निराशा को, ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा। कौन सी दहाड़? फाड़ कर रख दूंगा अपनी निराशा को, कोई निराशा मुझे टच नहीं कर सकती, नथिंग, निरंतर वो एक रस अवस्था, यही पुरुषार्थ है। भाषण देना पुरुषार्थ नहीं है, होमवर्क करना भी पुरुषार्थ नहीं है, पास होना फेल होना ये सब किसी पुरुषार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य पुरुषार्थ है एक रस अवस्था। कल भी कहा था, संपूर्ण पवित्रता की एक शब्द में परिभाषा, पवित्रता अर्थात समता, समता, समान स्थिति, एक रस स्थिति, इक्वानिमिटी, इक्विपॉइस, सुख दुख हार जीत जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सर्दी कुछ भी हो जाए, वो हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है, परंतु स्थिति एक रस। बाबा हमारी मम्मा चली गई, बाप कहते अब तुम्हारी बारी है
तो ये होगी पहली मुरली, कौन सी? 1:12 की। अभी आते हैं इस पूरे सीरीज की 42 मुरलियों में सबसे पावरफुल प्यूरिटी की जो मुरली है, और एग्जाम में टोटल 5 प्रश्न इस एक मुरली से है, इससे अधिक प्यूरिटी की कोई मुरली पावरफुल नहीं है, जितनी 42 मुरलियां है, और उसमें भी एक तो हम डायरेक्ट लीक कर देंगे क्वेश्चन, इससे अधिक पावरफुल कोई मुरली नहीं है प्यूरिटी की, सबसे पावरफुल। संसारी लोगों के लिए प्यूरिटी और ब्रह्मचर्य वाली टॉपिक नहीं, जो ब्राह्मण आत्मा है उनके लिए जो प्यूरिटी है उस पर ये मुरली है, और इससे पावरफुल और कोई मुरली नहीं है प्यूरिटी पर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुरली प्यूरिटी की पूरे 42 मुरलियों में से। इसलिए इसमें से टोटल 5 प्रश्न है एक ही मुरली से, और डायरेक्ट प्रश्न है, वो तो है ही इस 42 में, वो तो सबसे एक पावरफुल और है,
वो है 15th नवंबर 2003 की, 15th नवंबर 2003। इसको हल्का नहीं समझना, आंखें खोलकर, कान खोलकर सुनो। सफेद कागज पर काला दाग, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही कर लिया। ब्रह्मा ने भी इतना क्यों सहन किया, कलंक क्यों लगाए। प्यूरिटी वो तो है ही, 15th नवंबर, वो धर्मराज वाला चित्र सेंटर ऊपर लगा हुआ है, बाबा का चित्र और वो पूरे महावाक्य 15 नवंबर 2003। सबसे पावरफुल मुरली है प्यूरिटी की। 9th मई 1983। पर इस मुरली की जो मुख्य बातें हैं उसको छोड़कर हम पहले कुमारों से जो मुलाकात है उस पे आते हैं। तो आशीष भाई, कुमार अर्थात 14 बातें कल जो सुनाई थी, रैंडम में बता सकते हैं, जरूरी नहीं उसी क्रम से सुनाना है, रैंडम में जैसे सुनाना है वैसे। सुशील भाई ने 3 महावाक्य भी भेज दिए बना के, जिस 3 वाक्य में पूरी 14 बातें थी, ग्रुप में भी भेज दिया और वैसे भी भेजे थे, आपने ही पोस्ट किए थे। कुमार अर्थात बीके अर्थात नहीं, कुमार अर्थात बीके, ब्रह्मा कुमार, एक पर्सनालिटी वाले कुमार, और बीके विशेष कुमार, विश्व परिवर्तक कुमार, हीरो कुमार, 14 तो हुए नहीं, आर के रॉयल कुमार, आर डी के रूहानी दर्पण कुमार, अगला। ये सारे कुमार जो है, ये सारे स्लोगन है ना, सारे कुमार दिन रात मन में रिपीट करते रहना, सोते समय, उठते समय, सोते समय, उठते समय, जागते समय, क्योंकि सबका आधार है स्मृति, यही मुरली है, स्मृति ही आधार है। वृत्ति दृष्टि बाद में, पहले आधार है स्मृति। परम पवित्र आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, ये स्मृति ही आधार है। अगला शक्तिशाली कुमार, अगला त्यागी कुमार, और दो बाकी है अनुभवी, और दो बाकी है कमाल वाले कुमार, कमाल करने वाले कुमार और बैलेंस रखने वाले कुमार। राज ऋषि कुमार वो बोल दिया, त्यागी भी बोल दिया, दर्पण भी बोल दिया। तो कुमार अर्थात ये सारी बातें, 14 कुमार, ये क्या है? अच्छा, कुमार मींस ये है, पर जो सब भाई बहनों ने बनाए वो तो एक से बढ़कर एक थे सारे, एक से पढ़कर एक, नतमस्तक ही होना पड़ेगा हमको, कोई बोले तो हम नहीं बना सकते ये सब, पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे ऐसे बनाने में, हमको नहीं आता है ये, सही में नहीं आता। किसी ने वो बुद्ध वाला भी, अलग अलग बुद्ध वाला वो भी बनाया। ये वाक्य जो है शब्द शब्द में शक्ति है, इतना भी रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो तो पाप में नहीं गिरेंगे, और इस मुरली में महा महा महापाप, ये शब्द जहां जहां आ रहा है वहां से एक प्रश्न 100% है, 3 ही बार ये महा 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 आया है, उसमें से एक प्रश्न है पक्का 100%। बता दिया, अभी और कितना बताए। थाली तो रख दिए सामने, कम से कम हाथ डाल के खाने का तो पुरुषार्थ करो। 3 बार जो महा 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 है। तो अभी हम आते हैं, कल हमने जो नए हैंगर्स तैयार किए थे और आप सबको कहा था जीवन कहानी पढ़नी है उन संतों की, उन महान आत्माओं की, 61 संत ज्ञानेश्वर। तो यहां कुमारों से मुलाकात की है बाबा ने, कुमार अर्थात सबसे फर्स्ट पॉइंट साक्षी, तो संत ज्ञानेश्वर और साक्षी, ये दो पॉइंट को जोड़ना है। तो कल आप सब ने थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया होगा, स्टडी की होगी उनके जीवन की, तो देखा होगा कैसे बचपन में ही अनाथ हो गए, उनके पिताजी जो थे विट्ठल पंत गृहस्थी थे, सन्यास धर्म स्वीकार किया, इतना वैराग आ गया, सन्यास ले लिया, सन्यास ले लिया, उधर चले गए बनारस, चले गए महाराष्ट्र से। और उनकी पत्नी बहुत दुखी, बहुत दुखी। एक बार एक साधु महाराज के पास गई और उनसे उन्होंने पुत्रवान सौभाग्यवती ऐसा वरदान दे दिया। उसने कहा कहाँ से, मेरा तो पति ही नहीं है। और वह पति उन्हीं के पास आया था तो उस गुरु ने फिर उस पति उनको कहा कि तुम वापस गृहस्थ धर्म में जाओ। तो संन्यास धर्म की से वापस गृहस्थ धर्म में आए तो उस समाज ने उसको स्वीकार ही नहीं किया, इतना तिरस्कार किया, इतना तिरस्कार किया। उन माता पिता ने जाकर उन सारे ब्राह्मण वर्ग से पूछा कि हमको कुछ तो करो, क्या किया जाए, हम क्या करें। उन्होंने सब शास्त्र ढूंढे और कहा कि किसी शास्त्र में आज तक ऐसा पाप किसी ने नहीं किया। गृहस्थी से सन्यासी बना और सन्यास से फिर वापस। वो जो बच्चे थे उनके, उनको भी इतना वो सताया जो चारों थे, बहुत 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 मूर्तिमंत पाप ऐसा कहके उनको पुकारते थे। ये आ रहे उधर से मूर्तिमंत पाप, सन्यासी की विषय वासना का मूर्तिमंत प्रतीक सामने से आ रहे। वो जो छोटे बच्चे थे ना उनको ऐसा कहते थे, सन्यासी की विषय वासना का मूर्तिमंत प्रतीक। बहुत बहुत सताया। और फिर माँ बाप को क्या कहा गया कि आपके लिए बस एक ही उपाय है, देहांत प्रायश्चित, देहांत प्रायश्चित। तो बच्चे सोए रहते हैं, आधी रात को वो माँ बाप जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके बाद में ये अनाथ चार समाज उनको बहुत बहुत सताता है। वहां से शुरुआत है। और उसमें एक वाक्य है बहुत अच्छा। वो जाता है भिक्षा मांगने तो एक व्यक्ति होता है वो उसको लास्ट तक सताते रहता है। वो उसकी जो भिक्षा की झोली होती है ना उसको फाड़ देता है, पैरों के नीचे कुचल देता है। वो संत ज्ञानेश्वर छोटे है, वो आते रोते हुए अपनी माँ के पास। वो कहते हैं दुख कितना सहन करे। क्या पूछते हैं? दुख भी कितना सहन करे। उसकी माँ कहती है समाधाना ने दुख सहन करने हीपन तपश्चर्या साहे। समाधान से दुख को सहन करना ये क्या है? तपश्चर्या। और बाद में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी पूरी गीता का ट्रांसलेशन मराठी और 21 साल की उम्र में समाधि ले ली। तो उन्होंने वो सारा कुछ लिख दिया ज्ञानेश्वरी में। जो गृहस्थी, वो कभी गृहस्थी में गए नहीं, ब्रह्मचारी थे, परंतु गृहस्थी में क्या क्या समस्या है वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। सब सब इतने गहरे गहरे राज है, गीता ही है वो एक रीति से, गीता का ही ट्रांसलेशन। तो फिर बाद में तो वहां से चले गए, फिर वहीं आए। बहुत सारी स्टोरी है, लंबी कहानी, पर कहने का भाव साक्षी। तो जीवन में वो कैसे रहे हैं? साक्षी। जिस व्यक्ति ने इतना सताया, इतना सताया, लास्ट में वो उनकी शरण में आता है, पर वो कहते हैं मुझे जैसे कुछ पता ही नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो जीवन में इतना दुख आया, इतनी परिस्थिति आया, परंतु साक्षी भाव। तो हमने आज का हमारा पहला हैंगर कौन सा है? संत ज्ञानेश्वर अर्थात साक्षी 62। दूसरा हैंगर कौन सा है हमारा? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, हे गौरंग निताई, गौरंग निताई, वो और उनका साथी नित्यानंद, और इनको गौरंग कहा जाता है बंगाल में, गौरंग निताई, गौरंग निताई, गौरंग निताई। तो नित्यानंद और गौरंग, गौरंग अर्थात गौर वर्ण, चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। तो इनके लिए कुमार अर्थात क्या? कुमार अर्थात साथी एक ही बाप, जो तुम्हारे निमित्त है वो भी साथी नहीं है, वो सहयोगी है। साथी कौन है? एक ही बाप, बाप को ही साथी बनाना। चैतन्य महाप्रभु निरंतर हे कृष्ण 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 कृष्ण, पागल है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण रस, कृष्ण मंत्र, कृष्ण याद, पूरा जीवन कृष्णमयी है। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। यहां से भक्ति मार्ग की शुरुआत है,
चैतन्य महाप्रभु से। इतिहास को अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण के तो मंदिर ही नहीं है 8वीं शताब्दी से पहले। चाणक्य को देखो, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इस समय केवल शिवलिंग दिखाए है, शिवलिंग में जा रहे हैं युद्ध से पहले। कृष्ण और राधे के मंदिर कहां से बनने चालू हुए? 8th सेंचुरी से। और राम तो उसके भी बाद, उसके पहले ये सब था ही नहीं। सबसे पहले अगर इतिहास को देखो तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल, मोहनजोदारो, हड़प्पा, वहां से जो निकले अवशेष उससे पता चलता है। उसके बाद में ये पोस्ट वैदिक काल में बुद्ध आए, अशोक आया, चाणक्य, ये सारे लोग आए। उसके बाद में कहीं तब तक भक्ति कहाँ है? वहां भक्ति नहीं है। वहां भक्ति की शुरुआत तो बहुत बाद में हुई है, वो भी साउथ में हुई है, नॉर्थ में बाद में पहुंची भक्ति। धीरे धीरे साउथ से भक्ति निकली और फिर ऊपर ऊपर। सबसे पहला अगर ग्रेटेस्ट फिगर है कोई भक्ति का तो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, उनके 6 गोस्वामी, फिर उन्हीं के बाद मीरा, फिर कबीर, ये सारे सब बाद में आए, सब बाद में आए। फिर महाराष्ट्र के तुकाराम, उनको भी कहा जाता है, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ली थी, ऐसा एक जगह वर्णन है उन्हीं के अभंग में। और वहां से पूरे महाराष्ट्र में संत एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदेव, ये सब आए बाद में सब, पर शुरुआत चैतन्य महाप्रभु। और उस समय किसका बोलबाला था? बुद्धिज्म का। सबसे पहले वैदिक संस्कृति, और वेदों में फिर बहुत हिंसा है होने लगी, मतलब पशु वगैरह, इसलिए बुद्ध का आगमन है। और बुद्ध का आगमन होते ही जितने हिंदू धर्म वाले थे सब बौद्ध बन गए, सब बौद्ध बन गए, क्योंकि इतनी पावर थी आत्मा में, डायरेक्ट पधारी हुई आत्मा है ऊपर से, इसके लिए सब उसके प्रभाव में आ गए। फिर चारों तरफ बौद्ध धर्म फैल गया, सब तरफ सरफ। और जब बौद्ध धर्म बहुत फैल गया और उसमें भी फिर गिरावट आने लगी, फिर आगमन है शंकराचार्य का, जिसने फिर से हिंदुइज्म का रिवाइवल किया। जो बौद्ध बन गए थे उनको हरा कर वापस हिंदू बनाया। और जब शंकराचार्य का बढ़ गया मायावाद, चारों तरफ सन्यासी ही सन्यासी, सन्यासी ही सन्यासी सब तरफ, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, जो शंकर मत वाले थे उनको वापस भक्त बनाया, और भक्ति की लहर ऐसी चालू हुई। यह इतिहास है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है बहुत पावरफुल था, पर बाद में उसमें तंत्र मिक्स होने लगा, उसमें लोग मिक्सचर करने लगे, कर्मकांड आने लगे, जो जिससे छूटने लगे। बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छा, किसी की भी पूजा नहीं करनी है, बुद्ध की शरण जानी, मेरी नहीं, गौतम की नहीं, बुद्ध, बुद्ध स्थिति का नाम है। पर लोगों ने बुद्ध शब्द को इतना बिगाड़ दिया कि आज तो बुद्ध शब्द का अर्थ ही मूर्ति होता है, जबकि मूर्ति भंजक बुद्ध से बड़ा और कोई था ही नहीं। आज तो बुद्ध का शब्द का अर्थ ही बुद्ध। सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी है विश्व भर में? बुद्ध की। सबसे एक मंदिर है जहां पे, नेपाल का एक मंदिर, 1000 से ज्यादा मूर्तियां है जापान में, ये सब देशों में बुद्ध। पर बुद्धिज्म भारत में टिक नहीं पाया। बुद्धिज्म कहां चला गया? भारत से बाहर, नेपाल में चला गया, और उधर बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इधर चला गया, जापान में चला गया, श्रीलंका, भारत में कम हो गया, क्योंकि संन्यास वाले प्रिंसिपल ज्यादा थे उसमें। और एक कारण था चैतन्य महाप्रभु का आगमन। चैतन्य महाप्रभु ने इतनी पावरफुल आत्मा थी कि सबको चेंज कर दिया, फिर इधर से उधर, उधर से उधर और फिर जो भक्ति चालू हुई तो उसका रुकने का नाम ही नहीं फिर। तो चैतन्य महाप्रभु अर्थात केवल कृष्ण प्रेम में। चैतन्य महाप्रभु की 3 अवस्थाएं है जीवन की। पहली अवस्था जब वो संपूर्ण जागृत है, तब मंदिर सड़कों पर संकीर्तन कर रहे जैसे एस्कॉन वाले करते हैं ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये जागृत अवस्था में। उनकी दूसरी बीच की अवस्था है विरह की अवस्था। कृष्ण प्रेम में पागल है, जहां देखो वहां कृष्ण 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 कृष्ण, भागते हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और धड़ से गिरते है ही नहीं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये सेकंड अवस्था है। तीसरी अवस्था है जब वो अचेत है, पड़े हुए समाधि में। 3 स्टेजेस ऑफ भक्ति है ये। तो यहां पर क्या, एक बाप ही सब कुछ है, एक बाप ही और दूसरा कोई नहीं, कोई साथी नहीं, साथी एक बाप। तीसरा संत हमारे कौन है? 63 नरसिंह मेहता, गुजरात के जूनागढ़, भावनगर, वैष्णव जन थे तेने कही, वो जो गीत है ना, यहाँ पर लिया था पूरी एक क्लास इसके ऊपर एक बार 2018 या 16 में कभी। तो उनके लिए क्या, डबल लाइट, कुमार अर्थात डबल लाइट, हल्के, कोई बोझ ही नहीं। उनका भी जीवन पढ़ो तो बहुत सारे प्रसंग आते हैं उसमें, उस पर मूवी भी बनी है एक, यू कैन सी दैट, कैसे भगवान ही सब कुछ करता है उनके लिए, सब कुछ हल्का। गृहस्थी की कहानी है परंतु भक्ति रस से भरपूर है। नरसी भगत, एक गुजरात में फिल्म आई थी सबसे पहले, फिर उसको हिंदी में भी बनाई गई नरसी भगत की, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा इधर राजस्थान और गुजरात, क्योंकि गुजरात के संत है वो नरसी भगत, 15वीं शताब्दी। नरसी भगत वल्लभाचार्य, वल्लभ पंथी है, पुष्टि मार्ग कृष्ण उसी में आते हैं। उसके बाद में अगले कौन है, तुलसीदास। तो तुलसीदास के लिए क्या, रामचरितमानस, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये जो राम की भक्ति जो चालू हुई वो यहां से चालू हुई, अभी तक चल रही थी कृष्ण। इतिहास अगर देखा जाए, राम की भक्ति इतनी नहीं है, राम की भक्ति को सबसे ज्यादा फोर्स, मोमेंटम जो मिला वो रामचरितमानस की बात जो तुलसीदास जी ने लिखा। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो, यही अविनाशी आधार है। तो यहां पर भी क्या है, राम 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 राम, और यहां हमने किससे जोड़ा उसको, बाबा 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 बाबा, ये कहते रहो अंदर से, रिपीट करते रहो, बाबा 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 बाबा, चाहे तो माला ही ले लो एक, वो भी अच्छा है। अच्छा डिजिटल माला, कितनी बार किया उसकी नंबर, क्या बात है। वैसे तो बाबा ने यह भी कहा है, तुम जो बेहद की याद है उसको गिनती में लाते हो। कितना घंटे याद करते हो बाबा को, 8 घंटे। अच्छा 8 घंटे याद करता हूं, मतलब जो याद अविनाशी रहनी चाहिए वो 8 घंटे पे ला ली तुमने। साधु गांव में प्रवेश करता है माला पहना फेरते हुए, देखता है एक ग्वालिन है और उसका प्रेमी सामने है, वो उसको दूध दे रही है उसमें से पात्र से, और जो जो दूध लेने वाला है उसका प्रेमी युवक, वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, दोनों ऐसे, वो दे रही है और उसके पात्र में गिरा जा रहा है, बहा जा रहा है, और किसी को ध्यान ही नहीं, वो उसको देख रही है, उसको देख आंखों में। वो साधु कहता है, क्या कर रही हो, तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, तुम गिनती नहीं करती। ग्वालिन कहती है, जिससे प्यार है उससे गिनती कैसी। साधु अपनी माला फेंक देता है। जिससे प्यार है उससे गिनती। बाप कहते, तुम मेरी गिनती करते हो, 8 घंटा याद किया, 6 घंटा याद किया। एक तरफ तो साकार मूल्यों में आता है कि 8 घंटा, 8 का 4 कर दिया आपको हद में लगा। अगला सूरदास, अशांति फैलाने, वह अशांति फैलाने वाले और आप शांति फैलाने वाले। सूरदास किसके भगत थे, हाँ सूरदास कृष्ण भगत है। कृष्ण का भी कौन सा रूप, बाल रूप, कृष्ण के बाल रूप के भगत, पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य के फॉलोअर, जो जिस कुल में ब्रह्मा बाबा दादा लेकर वल्लभाचार्य से, ये भी पुष्टि मार्ग, सूर सागर नाम की किताब है, उसमें उन्होंने सारे अपनी चीजें लिखी है। सूर, तो सूर अर्थात क्या फैलाने वाले, शांति। अगला कबीर अर्थात हम विजयी रत्न है। बाबा ने गवर्नमेंट को, राजनीतिक जो लोग है ना, बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरे करने वाली है, तो सफलता का सितारा बन, गवर्नमेंट तक यह आवाज बुलंद करना है कि हम विजयी रत्न है। कबीर की सारी उलट बासियां देखो, ऐसी ऐसे चीजें हैं कबीर की लिखी हुई जो समाज के खिलाफ बहुत अलग है उसमें, मतलब वो डंडे से पिटाई करता है वो लोगों की, समाज की जितनी रूढ़िवादिता है वो सब पर आघात, कुठाराघात किया है कबीर ने। इसलिए कबीर एकदम हटके है, वो रिवॉल्यूशनरी है, विद्रोही है, जैसे चाणक्य विद्रोही है वैसे वो विद्रोही है। हर रीति रिसम रिवाज जो कुछ चल रहा था ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा स्टैब्लिश किया, वो सबके खिलाफ में बोलता है वो। और उसका जो बेटा था वो तो उससे भी एक कदम आगे था, कमाल, उस बेटे का नाम था कमाल, वो कमाल तो अपने बाप से भी 10 कदम आगे था। तो कबीर के लिए क्या याद रखेंगे, हम विजय रत्न है। दूसरा दयानंद सरस्वती, कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना, कुमार अर्थात अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना। और काम विकार से संबंधित जितनी सारी बातें हैं वो सब शक्तियों का मिसयूज है। अश्लील फिल्में, हस्तमैथुन, मास्टरबेशन, ये सारे लत में पड़े हुए हैं। बाकी सभी जो लत है, जो आदतें हैं, उस पर रिहैब सेंटर्स है, इसके लिए कोई रिहैब सेंटर नहीं बना हुआ। और ये सबसे बड़ा एडिक्शन है, सबसे बड़ा विकार, इससे बड़ा कोई विकार ही नहीं है सेक्सुअल फैंटेसीज, कामुक कल्पनाएं, क्योंकि ये सब फ्री अवेलेबल है, सारी हजारों लाखों वेबसाइट्स बनी हुई है। और इसमें सहज एक्सेस है और सारे युवक डूबे हुए हैं उसमें। ये सबसे बड़ा नरक है, नरक, जीवंत नरक। और ये सबसे एडिक्टिव है, ये अगर मिल जाता है भोजन की भी इच्छा नहीं जाती है, कुछ नहीं, दिन रात उसमें पड़े रहते हैं और वीर्यहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, अपने विवाहित जीवन में भी सफल नहीं हो पाते ये लोग। सब जगह डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, बीमारियां आ जाती है, एसटीडीज, एसटीडीज अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, बहुत बड़ी लिस्ट है एसटीडीज की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की बीमारियां, एड्स, गोनोरिया, कितनी सारी बीमारियां है, वो सब बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। और वो एक व्यक्ति कितनों को शिकार वो फैला देता है बीमारी। ये सबसे बड़ा विकार है, सबसे बड़ा नरक है, इससे बड़ा और कोई नरक आज नहीं है। सारा युवा वर्ग, युवा धन है राष्ट्र के लिए, वो धन खत्म हो रहा है, बह रहा है, शक्तियां खत्म हो रही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना। और दयानंद सरस्वती का जीवन अगर पढ़ो, इतना प्रेरणादायी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जीवन है, ब्रह्मचारी का जीवन है वो। सदा यह याद रखो, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी, विश्व निर्माण की जिम्मेदारी है। हम में विकार तो विश्व में विकार। फिर दूसरा रामकृष्ण परमहंस, समीप अर्थात समान बनने वाले ही फर्स्ट डिविजन में आ सकते। समीप, निरंतर भगवान के समीप। उनकी तो ऐसी अवस्था थी कि उनको नीचे लाना पड़ता था वो निरंतर कुछ भी हो जाए तुरंत खो जाते थे, उनको नीचे लाना पड़ता था। वहां पे वो मिठाई बनती है बंगाल में, संदेश वो खिलाते थे, तब कहीं उनको जबरदस्ती नीचे लाना पड़ता था कि ये खाओ, भक्त सामने है। अभी तुरंत भाव समाधि में चले जाते, अभी के तभी चले गए। नरेंद्रनाथ को कहा कि गीत गाओ, वो गीत गाना चालू करता है क्योंकि वो गायक है, उसकी आवाज कंठ बहुत मधुर, जैसे ही गीत गाता है गए, नाव में बैठे हुए भक्तों से मिलने जा रहे, उड़ते हुए पंछियों को देखा और भाव समाधि। इतने भोले भाले हैं, वो तोतापुरी मिलता है, तोतापुरी से कहते हैं मुझे आपकी साधना करनी है, तोतापुरी कहता है ठीक है, वो कहते हैं ठीक है मैं पहले माँ से पूछ के आता हूँ। उसको लगता है अपनी कोई उसकी लौकिक माँ होगी, काली माँ से पूछ के आता है कि करूँ क्या यह संन्यास वाली साधना, क्योंकि उन्होंने सब धर्म की साधना की, हनुमान जी की भक्ति की, जीसस क्राइस्ट की भक्ति की, सिखिज्म किया, बौद्धिज्म किया, सब किया, और देखा कि सबका परिणाम एक ही है, एक ही अवस्था में पहुंचते, हर धर्म को फॉलो किया। सर सर्वधर्म स्वरूप ही नहीं। तो वो तोतापुरी के साथ बहुत अच्छा उनका वार्तालाप है, वो तोतापुरी कहते बैठे मैं तुमको समाधि में भेजता हूं। वो समाधि में जाने लगते हैं तो वो मां दिखती है, काली मां बार बार। तो तोतापुरी कहता है क्या हो रहा है? वो कहता है मां का दर्शन हो रहा है। बोलते कहां? यहां। तो बोलते कहां से आ रही है मां? बोलते मुझे नहीं पता आती है। तो वो कहता है उसको काट दो, वो कांच का टुकड़ा लेता है और यहां निशान कर देता है। अब कहते अब करो, और जो समाधि में चले जाते 3 दिन बाहर ही नहीं निकलते। तोतापुरी कहते जो अवस्था को मैंने 40 साल लगाए इनको ये 3 दिन में प्राप्त हो गई। तो हर धर्म की साधना उन्होंने की। तो रामकृष्ण अर्थात सदा भगवान के समीप रहने वाले। उसके बाद में अगला स्वामी विवेकानंद, कुमारों को कौन सी मुश्किल है, दो रोटी खाना और बाप की सेवा में लगना यही काम है ना, दो रोटी के लिए निमित्त मात्र कोई कार्य कर लो, पैसा पैसा पैसा, नौकरी नौकरी नौकरी। सुबह कल ओपड़ी में दो कुमारियां आई थी, सुबह 8 बजे नौकरी में जाती है, रात को 9 बजे आती है, हाँ 2 घंटा ट्रेवल में जाता है, ये चल रहा है, पूरा दिन उसमें चला जाता है, और फिर पुरुषार्थ होमवर्क कब करे कैसे करे, वो खाना बना के लेके जाना पड़ता है बीच में, तो उसके लिए 7-6 बजे से चालू हो जाता है सारा, मुश्किल है। बाबा कहते हैं, कहते हो ना लगाव से तो नहीं कहते हो ना, तो कुमार जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन है, ज्यादा बंधन नहीं चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस बाबा ने कहा फ्रीडम इस कुमारियों के ग्रुप, वो हम कर लेंगे। अगला साई बाबा, साई बाबा के लिए 3 पॉइंट है। सबसे पहला तो छत्र छाया के अंदर रहो तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो सोचो साई बाबा बैठे हैं और ऊपर से छत्र छाया है। दूसरा अर्थात उसमें फिर निर्विघ्न भी हो जाएंगे, अगला आज्ञाकारी, और तीसरा है मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति। साई बाबा की एक जीवन चरित्र हमने बचपन में पढ़ा था, साई चरित्र, और बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है, बहुत सारी मूवीज है साई बाबा पर, और बहुत सारे सीरियल्स भी बने हुए हैं, तो जो कि उनकी महिमा दर्शाते हैं गाते हैं। तो ये सारे जो लोग थे इनमें कुछ बातें कॉमन है, प्रभु प्रेम, वैराग, संन्यास भाव और त्याग, तपस्या, विश्व प्रेम, आत्माओं के लिए प्रेम, ये सारी बातें हैं इनमें। तो ऐसी हमने कितनी 10 पॉइंट देखी, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट 61 साक्षी, दूसरा साथी, साक्षी और साथी, दूसरा एक बाबा ही साथी है, दूसरा नहीं कोई, तीसरा डबल लाइट, डबल लाइट किसके लिए था हमारा, नरसिंह मेहता, चौथा तुलसीदास, तुलसीदास बाबा बाबा कहते रहो अंदर से बस, अगला सूरदास, सूरदास के लिए क्या, शांति फैलाने वाले, उसके बाद कबीर दास, कबीर के लिए क्या, विजय रत्न, अगला दयानंद सरस्वती क्या, अपनी शक्तियों का मिसयूज नहीं करना है, ऐसी कोई भी आदत आज है तो उसी आदत को आज हटा दो, संकल्प कर लो कि यह आदत मुझे मुक्त, इस आदत से मुझे मुक्त हो, ये होना ही है किसी भी आदत से, ये एडल्ट फिल्म देखने की आदत, मास्टरबेशन की आदत, सेक्सुअल फैंटेसीज की आदत, इस तरह का साहित्य पढ़ने की आदत, वो व्यक्ति हटा दो, वो स्थान जिसमें ये भावनाएं होती है हटा दो। संसार में क्या कहते हैं, युवक युवती, वी हैव फॉलन इन लव, वास्तव में फॉलन ही है वो, फॉलन अर्थात चरित्र से गिरे है, फॉलन चरित्र से गिरे है वो, लव है ही नहीं एक्चुअली वो, तो ये सब आदतों को मिटाना। अगला रामकृष्ण परमहंस, बाप समान, समान समीप, अगला विवेकानंद, क्या चाहिए, बस दो रोटी चाहिए, बस मुक्त होके घूमो, क्यों चाहिए, हाँ स्वतंत्र है, सन्यासी है, सन्यासी है, बन के रहना है भीतर से, बेहद के सन्यासी हो, कुछ नहीं चाहिए हमको। हमको याद है हम एक हॉस्पिटल में थे, यहाँ ने बहुत पहले 2002 में, वो हॉस्पिटल इतना पॉलिटिकल एरिया था, इतना पॉलिटिकल एरिया था, भयंकर, एक पेशेंट एडमिट होता था तो 10 पॉलिटिशियंस के फोन आते थे, अगर किसी का कुछ हो गया तो इतना प्रेशर और ये सब रहता था वहां पे। 6 महीना हमने वहां काम किया था, कम से कम 35 पोस्टमार्टम किए थे उस समय तो वहां पर हमारे जो बॉस थे ना, उन्होंने एक बात हमको कही थी जब हम गए, तो बोले यहां पर एक नियम याद रखना, अपना रेजिग्नेशन लेटर जेब में डालना, रखना, कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, लो स्वतंत्र, ज्यादा सहन नहीं करना किसी को। और वो खुद जो थे इतने सालों से वहां पर थे, सुबह से लेके शाम तक पेशेंट देखते थे, वो इतने फेमस थे और खड़े खड़े पेशेंट देखते थे, खड़े ही रहते थे, बैठते ही नहीं थे, उनके साथ हमको भी खड़े रहना पड़ता था, और वो नहीं जाते तो हम कहां से जाए, उनको तो मतलब कोई सुधी नहीं थी ना खाने की अपनी। जब उनकी शादी थी, शादी आज जैसे कल शादी, तो 2 घंटा पहले छुट्टी ली उन्होंने, तब तक पेशेंट देख रहे थे, फिर शादी करके आए और वापस इवनिंग की ओपीडी, ऐसे थे वो डॉक्टर अविनाश लवाड़े, ऐसे भयंकर थे और उनके साथ हमको 6 मास काम करने, और वो हम जब गए तो हम तो बहुत भावुक थे उस समय, तो बोले ये जो है ना तुम्हारी सेंसिटिविटी तुम्हारे दुश्मन है, भावुक नहीं होना पेशेंट के लिए, तुमको तुम भी रोते रहोगे पेशेंट के साथ तो ट्रीट कैसे करोगे, ऐसे ऐसे बहुत उसको फटकार देते थे बिल्कुल। हम तो छोटे थे 21 साल के, तो एकदम पावरफुल थे वो, तो उनसे हमने बहुत सीखा। हमको रोना आता था अगर पेशेंट अगर होता था, बोले क्यों रो रहे हो, एक पेशेंट इतना दुखी था कहते थे पैसे नहीं है, तो फिर हमने अपने पैसे दे दिए उसको, 500 रुपए दिए, और बाद में उन्होंने बताया वो पेशेंट ने क्या किया बताया, तुम्हारे पैसों का जाके दारू पिए, उसने बहुत ही सिखाया हमको डंडा लेकर उन्होंने। तो अगला साई बाबा, साई बाबा के लिए आज्ञा कर रहा है छत्र छाया मास्टर सर्वशक्तिमान, आपको ये पढ़ के आना है कल इनके जीवन कहानी 71 लल्लेश्वरी लाल देत कश्मीर की ये महिला संत है, निर्वस्त्र घूमती रहती थी, इसकी जबरदस्त कहानी है जीवन की, महिला संत है ये, इतनी निर्भय निर्भीक, कोई भय नहीं उसको, निर्वस्त्र घूमती रहती थी। एक दूसरा अक्का महादेवी, ये भी वैसे ही है कर्नाटक की, इधर बैठ जाओ। तीसरा मीरा देवी 53, अगला मां शारदा, अगला सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता जानते स्वामी विवेकानंद के साथ, अगला सावित्री बाई फुले, इनकी भी बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग, आज ये सब पढ़ना है आपको, आज का होमवर्क है ये। फिर आनंदमयी मां मुरलियों में आता है, उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर, मदर टेरेसा, और लास्ट माता अमृतानंदमयी, ये तो अभी भी है माता अमृता में। तो आज का पहला होमवर्क कौन सा, ये जो मुरली है इसको डीपली पढ़ना है, और इसकी 2-3 बातें बता देते हैं। बाबा ने कहा महा महा पाप, पाप किसको कहेंगे, इस ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण आत्माओं के लिए दैहिक दृष्टि रखना, भाई के लिए, स्त्री के लिए, बुरी बहनों के लिए, ये है महा महा पाप, पाप दैहिक दृष्टि। कोई भी लगाव है, लगाव के बहुत सारे प्रकार बताए, वो सारे लगाव है तो फेल, उसको क्या कहा, रॉयल नर्क, रॉयल माया, एक ये शब्द प्रयोग किया, महा 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 पाप प्रयोग किया गया, और इसमें फिर अगर कोई तुमको समझाते हैं तो जिद करना, अर्थात तुम अपने पाप का स्पष्टीकरण करते हो, इशारे से समझ लो, पाप का स्पष्टीकरण नहीं करो, स्पष्टीकरण किसका करते हो, पाप का स्पष्टीकरण, और चल जाएगा आग में घी डालना है, तेल डालना है, पाप की लकीर लंबी कर देते हो, और ये क्या है, ये मृग तृष्णा, क्या है ये, सुनहरी मृग माया, ये सब बातें इसमें कही है। ये इस मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से जैसे कहा ना 5 प्रश्न है इस एकमात्र मुरली से, और महापाप जो शब्द है वो तो है ही कन्फर्म्ड, भक्ति वाचू न भुक्ति ची मद जड़ली रे व्याधि, विठला मीच करा अपराधी, मैं दोषी हूं, जब ये मानोगे तब कहीं उन्नति का मार्ग चालू होगा, दूसरों को दोषी नहीं समझना, मैं दोषी हूं तब मुक्ति का मार्ग चालू होगा, विठला मीच करा अपराधी, मैं ही अपराधी हूं। तो ये मुरली है, तो आज के सबसे पहला होमवर्क इस मुरली को अच्छे से रिवाइज करना, कितना अच्छे से, घोट घोट के, कुछ भी छूटने न पाए। दूसरा ये जो फीमेल सेंट्स है इनके जीवन को पढ़ना है, ये इनकी जीवन कहानी पढ़ना, ठीक है। दूसरा तीसरा कन्फेशन कार्ड मतलब एक क्रिश्चियनिटी में होता है कन्फेशन कार्ड, उसमें ये स्वीकार करना मैंने कौन कौन से पाप किए हैं वो लिखना है, आपने ब्राह्मण जीवन की में किए हुए पापों को लिखना, वो भी 5 स्टेजेस में टाइम हो गया है। उसमें पहला होता है नो योर सिंस, अपने पाप को जानना, दूसरा बी सॉरी फॉर योर सिन, मैं सॉरी, मैं मानता हूं ये मैंने पाप किया और मैं बहुत पश्चाताप करता हूं, और फिर एक संकल्प नॉट टू सिन अगेन, इसके बाद ये पाप नहीं करूंगा। तीसरा चौथा कन्फेस योर सिन टू द प्रिस्ट, ये क्रिश्चियनिटी में होते हैं, यहां बाबा के सामने उसको स्वीकार कर लेना, और डू द रिपेंटेंस द प्रीस्ट गिव्स, जो प्रीस्ट होता है ना वो रिपेंटेंस देता है, फिर
कोई पश्चाताप देता है कि तुम ये करो, ऐसी 5 स्टेजेस में। तो एक कन्फेशन कार्ड बनाना है, उस कन्फेशन कार्ड में ये सारी बातें लिखनी है, अपने किए हुए पाप, बाबा से माफी, क्षमा, और स्वयं को ही दंड दो कोई ना कोई उसके लिए। पोस्ट मत करना, ये खाली लिखना ये खाली अपने तक ही रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो दूसरे को पता चल जाएगा और एक दूसरे की प्रति दृष्टि वृत्ति गड़बड़ हो जाएगी सारी। कि लोगों को तो चैन की राहत मिलेगी कि हमसे बड़े बड़े पापी यहाँ पर है हमारे पाप तो क्या लिंबू टिंबू पाप, छोटे मोटे इसको गलत गलत दृष्टि से देख लिया। नहीं तो ये ऐसे नहीं। इस मुरली में एक बहुत अच्छा वाक्य है जो हमसे मिस हो रहा है, शारीरिक संबंध में आना अर्थात, ऐसा एक है कहीं तो, शारीरिक संबंध में आना अर्थात, कहाँ है वो ढूंढो जरा। अच्छा ये है होमवर्क। तीसरा अगला, ये जो ऑडियो है, ये जो सुना है ना हमने, इसका ऑडियो अपने अपने मुख से ये बोलना है और वो पोस्ट करना है। कौन सा ऑडियो वो सुन लेते हैं, ये हमारे ही आवाज में आप अपनी आवाज का बनाना, ये हमने अपना बनाया है वो कौन सा है, शारीरिक संबंध में आना। हाँ जोर से पढ़ो, शारीरिक संबंध में आना अर्थात आग का धोखा खाना। और भी है कुछ, कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे, तो शारीरिक संबंध में आना अर्थात आग का धोखा खाना। 62 पे थर्ड पिच, थर्ड लाइन। तो सभी स्थिर बैठेंगे। क्या लेके आए तुम? अच्छा ओम शांति भाई जी, भाई जी आप मेरे सद्गुरु हो मुझे आपका हमेशा आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी दिव्य दृष्टि। अरे वाह बढ़िया, क्या नाम है आपका? शिवांश, कहाँ से आ रहे हो? अरे इसको माइक दे दो, एक सद्गुरु एक बाप है माइक दे। ओम शांति बोल दो।
ओम शांति।
क्या नाम है?
शिवांश।
कहाँ से?
पैठन।
पैठन से कब आए?
कल।
क्यों आए? क्यों आए? बढ़िया है। बाप दादा कहाँ है? तो आपको कुछ सुनाना है? हाँ आप एक्शन करो, हम भी लगाते हैं। एक्शन के साथ सुनाओ।
I am a topper, I am a keyboard. I am a keyboard, I am winner, I am winner, I am responsible, I am responsible, I am number one, I am number one, I am discipline, I am discipline,
I can stretch,
I remember everything.
प्रैक्टिस कहाँ चली गई? तो हाँ ये तो मेन था। ओम शांत, सभी स्थिर। ये ऑडियो सबको अपनी आवाज में भेजना है।
आग लगा दूंगा मैं दुनिया हिला दूंगा मैं, आग लगा दूंगा मैं दुनिया हिला दूंगा मैं, भर के ज्वाला सीने में हर डर को मिटा दूंगा मैं, जिस भय ने तुझको रोका है, जिस भय ने तुझको रोका है, नहीं है सच कुछ भी ये सब तो धोखा है, बढ़ता रह तू आगे, किसने तुझको रोका है, किसने तुझको रोका है, बन के ज्वाला में एक आग लगा दूंगा, बन के ज्वाला में एक आग लगा दूंगा, हर डर की जड़ को मैं जड़ से मिटा दूंगा, एक जिंदा लाश नहीं तू ना हो मुकम्मल ऐसा काश नहीं तू, एक जिंदा लाश नहीं तू ना हो मुकम्मल ऐसा काश नहीं तू, है खुदा तेरे ही साथ पहचान न खुद को यार तू, पहचान न खुद को यार तू, जानता हूँ कि आंखें तेरी भी रोती है, जानता हूँ कि आंखें तेरी भी रोती है, कई रातों में भी कहाँ ये सोती है, लेकिन क्या तू हार मान लेगा, नहीं कभी नहीं, तो फिर सुन मेरी बात, जब दर्द हो तो रो लेना, ताने हो तो सुन लेना, जब दर्द हो तब रो लेना, ताने हो तो सुन लेना, शांत होकर फिर से यार एक और प्रयास तू कर लेना, दुनिया की बातों को हंस के तू डालना, हर बुरी आदत को तू जिंदगी से निकालना, बोले पागल कोई तो भी तू सह लेना, ना रूठना उससे तू बस मेहनत से कह देना, ये सीने पर जो घाव है, घाव नहीं फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो ना, हम पागल ही अच्छे हैं। अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, टूटी हुई तलवारों से विजेता शमशीर सजाऊंगा, रोती हुई आंखों में मैं रौनक फिर से लाऊंगा, रोती हुई आंखों में मैं रौनक फिर से लाऊंगा, मायूस चेहरों पर मैं खुशियां बनकर छाऊंगा, अपने दर्द को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, फाड़ कर रख दूं हर निराशा को, ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा, ऐसी मैं दहाड़ लगाऊंगा।